शनास, मेरा ये जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था, ये मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता दूं. मैं पिछले 7 साल से जो है ब्राजील में रह रही हूँ. यहाँ मैंने अपना पीएचडी किया, उसके बाद मैं अपने पोस्ट डॉक पे हूँ. तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट मेरा पीएचडी प्रोजेक्ट था. हमारा मकसद जो है वो ये है कि जितने भी जरई हमारे बकाया जात हैं, जिसको एग्रीकल्चर वेस्ट कहते हैं, हम उनको यूटिलाइज करें और उन्हें हम किसी कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स जो है उनसे उनको हासिल किया जा सके. तो इसके लिए सबसे पहले हमने टारगेट किया ऑरेंज वेस्ट को, क्योंकि ब्राजील जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑरेंज जो है वो प्रोड्यूस करता है. तो हर साल मिलियंस ऑफ टन के हिसाब से ऑरेंज की प्रोसेसिंग होती है. तो उसी हिसाब से जो है तकरीबन आधा जो है वेस्ट जो है निकलता है उस इंडस्ट्री से. तो हमने उस वेस्ट को यूटिलाइज किया. सबसे पहले जो मेन प्रोडक्ट हमने बनाई वो थी बायोथेनॉल, जिससे गाड़ियां चलती हैं. बहुत सारे सामने को, चूंकि पाकिस्तान में ये भी प्रोग्राम सुना जा रहा होगा, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, चूंकि अभी वहां पे ये फ्यूल जो है इंट्रोड्यूस नहीं हुआ. लेकिन ब्राजील दुनिया का वो मुल्क है जिसने इसको इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है. यहाँ पे तकरीबन 70 से लेके 80% तक जो गाड़ियां हैं वो फ्लेक्स फ्यूल पर हैं. और यहाँ पे लोग पेट्रोल स्टेशन पे जाके देखते हैं कि भाई आज जो है पेट्रोल की कीमत कम है या बायोथेनॉल की कीमत जो है वो कम है, ताकि उसको जो है वो यूज किया जा सके. तो बेसिकली हमने उस बायो वेस्ट को, जो कि ऑरेंज माल्टे का छिलका, उसके अंदर से निकली हुई मेम्ब्रेन्स और बीज जो कि ऑरेंज जूस निकालने के बाद इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होती हैं, रह जाती हैं, बच जाती हैं, और वो उसको सिंपल कचरे की फॉर्म में जो है कहीं पे ढेरों में फेंक दिया जाता है. तो हमने उसको इस्तेमाल किया और कुछ ड्रग्स हमने उससे बनाई हैं. नैनो फाइबर्स, नैनो सेलुलोज हैं, वो भी हमने उनसे बनाए हैं. और जेलिंग एजेंट्स जो हैं, जो कि जैम्स में और मार्मलेड्स में यूज होते हैं, उनको भी हमने एक्सट्रैक्ट किया है. तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये उन एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज से रिलेट करता है जो कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज में, सनतों में प्रोड्यूस होते हैं. पाकिस्तान एक जरूरी मुल्क है और मुझे ये लगता है कि इस प्रोजेक्ट को हम ब्राजील के साथ कोलेबोरेशन में वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं. तो शनास, फिलहाल ऐसा है कि ये जो रिसर्च है मेरी, ये बेंच स्केल पर है. और कंसिडरिंग सक्सेस जो कि हमें मिली अपने रिजल्ट से, पेटेंट हमने किया हुआ है इसको, अब मैं ये समझती हूँ कि इसकी एप्लीकेशन जो है प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा है. जी
ये बताइएगा कि क्या आम लोग जो हैं वो भी वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं और किस तरह वो वोट दे सकते हैं?
बिल्कुल. मैं जितने भी अभी फिलहाल मुझे देख रहे हैं मेरे नाजरीन या सामीन जितने भी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि पहला जो राउंड था वो ये था कि मेरे प्रोजेक्ट को एक्सपर्ट पैनल था जिसने उसको एवेलुएट किया. और सेमीफाइनलिस्ट की लिस्ट में पूरी दुनिया में मोर देन 800 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें मेरा प्रोजेक्ट जो है वो चूज हुआ है, सिलेक्ट हुआ है. तो जो नेक्स्ट राउंड है वो टोटली डिपेंडेंट है जी आप पे. आप मुझे वोट कीजिए और आपकी वोटिंग्स पर ही जो है, आपकी वोटिंग्स जो है उन्हीं पर जो है आगे एवेलुएशन होगी.
ठीक,
वोटिंग के लिए आपको गेस्ट की वेबसाइट पे जाना होगा. 5 हाईएस्ट वोट है, आप उसको प्लीज कीजिए. 3 दिन है जो कि रह गए हैं एंड होपफुली आपके वोट्स जो हैं.
से मैं ये जानना चाहूंगी, डॉक्टर आवान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी करते हैं तो आपने ब्राजील में वक्त गुजारा है वहां पे, और पाकिस्तान में ये जो फील्ड है इसमें फर्क क्या है? क्या पाकिस्तान में क्या लिमिटेशंस हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं?
देखो पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो थोड़े से कम हैं. ऑब्वियसली आपको काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आपको लैब्स चाहिए, आपको केमिकल्स चाहिए और अब वो आपको सब चीज़ें इन टाइम चाहिए. थोड़ा सा ये फैक्टर है जो कि पाकिस्तान में फिलहाल इकोनॉमी हमारी जो है वो इतना हमें अलाउ नहीं कर रही है कि हम रिसर्च पे तवज्जा दे सकें. लेकिन जहां तक टैलेंट की बात है, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है. पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड कौम है और आप जहां पे भी देखें आपको पाकिस्तानी जो है वो पूरी दुनिया में मिलेंगे.
सही,
और एज अ पाकिस्तानी मैं
बहुत
समझती हूँ
शुक्रिया,
कि
थैंक यू सो मच, आइंदा